मोक्षमार्गसिनीतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आहा, उक्तः सप्तभूमिविस्तीर्णोऽधो लोकः, सात पृथ्वियों तक विस्तार को प्राप्त अधोलोक का वर्णन पूर्ण हुआ। और ये जो अधोलोक होता है, ये छह राज्यों में होता है। नीचे मध्यलोक से नीचे सात राज्य तो है ही है, लेकिन अधोलोक जो मतलब जो नरक भूमियां होती है वो छह राज्य तक होती है। अंत का जो एक राज्य है वो खाली रहता है। रज्जु बोलते हैं और राजू भी बोलते हैं। हिंदी में राजू बोलते हैं, संस्कृत में रज्जु बोलते हैं। कथम पुनस्तिर्यग्लोक, इदानीं तिर्यग्लोको वक्तव्य। तिर्यग्लोक का कथन करने योग्य है तो वो किस प्रकार का है? तिर्यग्लोक जिसको मध्यलोक कहते हैं, तिर्यग का अर्थ होता है तिरछा, वो कैसा है? तो आचार्य कहते हैं, यतो संख्येया स्वयंभू रमण पर्यंतास तिर्यग प्रचय विशेषा विशेषीणावस्थिता द्वीप समुद्रास ततस्तिर्यक लोक इति। अच्छा, प्रश्न ये था कि वो तिर्यक लोक कैसे हो गया, उसका नाम तिर्यक लोक क्यों पड़ा? तो आचार्य उत्तर देते हैं, चूंकि असंख्यात स्वयंभू रमण पर्यंत तिरछे विस्तृत फैले हुए विशेष रूप से अवस्थित द्वीप और समुद्र होते हैं इसमें, इसलिए इसको तिर्यग लोक कहते हैं। के पुनस्तिर्यग व्यवस्थिता इत्यतः, वे कौन है जो तिर्यग अवस्थित है? तो उसके लिए सातवां सूत्र अवतरित होता है सर्वार्थ सिद्धि में। तत्वार्थ सूत्र का सातवां सूत्र है, जम्बू द्वीप लवणो दादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप और लवणोद दोनों के साथ आदि शब्द को जोड़ना है। जम्बू द्वीपादय लवणोदादय ऐसे जोड़ना है। ये शुभ नाम है जिनके, ऐसे द्वीप और समुद्र हैं। जम्बूद्वीप आदि द्वीप है और लवणोदादि समुद्र है। तो जम्बूद्वीपादय द्वीपाह, जम्बूद्वीप आदि द्वीप है, लवणोदादय समुद्र। यानी लोके शुभानि नामानि तन्नामानस्ते, जो लोक में शुभ नाम होते हैं उन नामों वाले ये द्वीप और समुद्र होते हैं। तद यथा, उसको बतला रहे हैं, जम्बू द्वीपो द्वीप, जम्बू द्वीप द्वीप है, लवणोदह समुद्र, लवणोद समुद्र है, धातकी खंडो द्वीप, धातकी खंड द्वीप है, कालोदह समुद्र, कालोद समुद्र है, पुष्करवरो द्वीप, पुष्करवर द्वीप है, पुष्करवर समुद्र, पुष्करवर समुद्र है, वारुणीवरो द्वीप, वारुणीवर समुद्र, फिर वारुणीवर द्वीप है, फिर वारुणीवर समुद्र, क्षीरवरो द्वीप, क्षीरवर समुद्र, क्षीरवर नाम का द्वीप है, उसके बाद क्षीरवर समुद्र, फिर घृतवरो द्वीप, घृतवर समुद्र, घृतवर द्वीप है और घृतवर समुद्र है, और फिर सातवें क्रमांक पर कह रहे हैं इक्ष्वरो द्वीप, इक्ष्वर समुद्र, इक्ष्वर द्वीप है और इक्ष्वर समुद्र है, और आठवां द्वीप कौन सा है? आठवां द्वीप कौन सा, सब जानते हैं, जम्बूद्वीप तो पहला है। अष्टम द्वीप कौन सा होता है? नंदीश्वर द्वीप होता है। और नंदीश्वर वर समुद्र, उसके आगे नंदीश्वर वर समुद्र, फिर अरुण वरो द्वीप, नौवा जो है अरुण वर द्वीप है, अरुणवर समुद्र और उसके बाद अरुणवर समुद्र, इत्येवम असंख्य द्वीप समुद्रा, इस तरह असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं। स्वयंभू रमण पर्यंता वेदितव्या, स्वयंभू रमण पर्यंत जान लेना, जानने योग्य है कह रहे। तो अमीशाम विष्कंभ सन्निवेश संस्थान विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह, इनका विष्कंभ यानी इनका व्यास, फिर सन्निवेश यानी ये किस तरह से अवस्थित है वो, संस्थान यानी इनकी आकृति, इन भेदों की प्रतिपत्ति के लिए, जानकारी के लिए। देखिए प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर जानकारी है, और वहां चरणानुयोग में आदर गौरव पूजा प्रशंसा है, विनय है। आचार ग्रंथों में इसका अर्थ विनय भी होता है प्रतिपत्ति का। जैसे बताया ना कि कोई प्रागूर्णक नवागंतुक कोई साधु होते हैं तो 3 दिनों तक उनके पास सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक यहाँ के साधु प्रस्तुत होते हैं, फिर 3 दिन के बाद विशेष प्रतिपत्ति करते हैं यानी विशेष विनय अधिक करते हैं। अगर पता चलता है 3 दिनों में कि इनके पास ज्ञान अधिक है, इनके पास तप अधिक है, इनके पास ध्यान अधिक है, तो इन गुणों के माध्यम से उनको फिर विशेष सम्मान देते हैं। तो प्रतिपत्ति का अर्थ वहाँ पर विनय है, और प्रतिपत्ति का अर्थ श्रावक धर्म में जैसे 8 अंगों में प्रतिपत्ति शब्द आता है रत्नकंठ श्रावकाचार्य में, वहाँ पर प्रतिपत्ति का अर्थ पूजा प्रशंसा है यानी जिसको सत्कार कहते हैं तत्वार्थ सूत्र में, और प्रतिपत्ति का अर्थ अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत के अंतर्गत, वहां पर भी वही आदर सम्मान आदर गौरव लिखा है वहां पर। तो नवोपचार विधि से जो पड़गाहन आदि करते हैं उसको प्रतिपत्ति कहते हैं, और तत्पूर्वक दान दिया जाता है। तो विशेष जानकारी के लिए आचार्य कह रहे हैं कि कैसे कैसे हैं, सब पूरी व्यवस्था बता रहे हैं। द्विर द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः, तो दुगने दुगने, द्विर द्विर यानी डबल डबल, विष्कंभाः चौड़ाई वाले, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पूर्व पूर्व के जो द्वीप समुद्र हैं उनको परिक्षेपिण यानी घेरने वाले, और वलयाकृते, वलय यानी चूड़ी के समान आकृति वाले होते हैं। बीच में जम्बूद्वीप है, उसको चूड़ी के समान घेरे हुए लवण समुद्र है, लवण समुद्र को चूड़ी के समान घेरे हुए धातुकी खंड है, उसको चूड़ी के समान घेरे हुए कालोद समुद्र है, उसको चूड़ी के समान घेरे हुए पुष्कर द्वीप है, उसको चूड़ी के समान घेरे हुए पुष्कर समुद्र है, उसको घेरे हुए वारुणीवर द्वीप है, उसको चूड़ी के समान घेरे हुए वारुणीवर समुद्र है, और उसको घेरे हुए क्षीरवर द्वीप है, और उसके बाद क्षीर समुद्र है, और आगे ये क्रम चलता रहता है। पर इतना ध्यान में रखना है कि जम्बू द्वीप से दुगना विस्तार समुद्र का है, और समुद्र से दुगना विस्तार फिर जो आगामी द्वीप है उसका है। यानी आप ये मत सोचना कि जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है तो फिर धातुकी खंड 2 लाख योजन का होगा, नहीं, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है तो लवण समुद्र 2 लाख योजन का है, और लवण समुद्र से दुगना धातुकी खंड है 4 लाख योजन का, फिर उससे दुगना कालोद समुद्र 8 लाख योजन का, और उससे दुगना 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है, और उससे दुगना 32 लाख योजन का पुष्कर समुद्र है। तो अपन ऐसे देखेंगे, सुमेरु पर्वत से अगर गिनेंगे ना तो साढ़े 22 लाख योजन
मानुषोत्तर पर्वत आएगा। कैसे आएगा? तो देखो पुष्कर द्वीप जो है 16 लाख यूएन का है, तो उसका आधा कर दो, बीच में मानुषोत्तर द्वीप है, तो आधा करने से 16 का 8 लाख आयोजन हो गया। नहीं, एक यहां से गिनते हैं अपन मध्य से, तो सुमेरु पर्वत से समुद्र के तट तक 50,000 योजन है, 50,000 योजन। और फिर लवण समुद्र 2 लाख योजन है, ठीक है, और उसके बाद धातकी खंड 4 लाख योजन है, फिर कालोद समुद्र 8 लाख योजन है। तो इनको टोटल करो कितना हुआ है, 50,000 को तो अपन उसमें गिन लेंगे, अभी योजनों को गिन लेते पूरा, कितने लाख योजन हो रहे हैं वो गिन रहे हैं। दो और चार और आठ 16 हो गए। अब नहीं, दो और चार 14 हुए। हाँ, अब वो जो पुष्कर द्वीप है उसके बीचों बीच मानुषोत्तर पर्वत है, तो उसको हाफ करना होगा, वो 16 लाख योजन का है, तो 8 लाख योजन ही अपने को रखना होगा अंदर। तो वहां तक मनुष्य लोग है, मेरु पर्वत से मानुषोत्तर पर्वत तक, तो ये 22.5 लाख योजन हुआ। और ये 50,000, 22.5 लाख योजन हुआ। और ये तो उसका उसकी त्रिज्या हुई, रेडियस। अब रेडियस इंटू 2 डायमीटर हो जाएगा, तो मनुष्य लोक का डायमीटर जो है वो 45 लाख योजन होता है। और 5 पैतल्ला बोलते ना समवाय अंग में, जो जो समान समान होते हैं उनका एक साथ संग्रह करके वर्णन किया जाता है। तो पहली पृथ्वी का जो सीमंतक बिल है, जहां श्रेणिक राजा का जीव है, वो भी 45 लाख योजन का है। और प्रथम स्वर्ग का जो ऋतु विमान है, ऋजु विमान भी बोलते हैं उसको, वो भी 45 लाख योजन का है। इसी तरह सर्वार्थ सिद्धि विमान जो है, अनुत्तर विमानों में सर्वार्थ सिद्धि विमान है, वो भी 45 लाख योजन है। और फिर उसके ऊपर ईशत प्रागभार नाम की एक स्फटिक की पृथ्वी है, उसको सिद्ध शिला कहते हैं, वो भी 45 लाख योजन प्रमाण है। तो 5 हो गए कि नहीं, गिनो 5 कैसे हुए। पहला तो अपन ने मनुष्य लोग गिनाई, फिर नीचे का जो प्रथम बिल था सीमंतक, वो भी 45 लाख योजन का था। फिर ऊपर का कौन सा विमान था, सौधर्म स्वर्ग का कौन सा विमान था, दो नाम बताए थे अभी हमने। आप लोग क्या सावधानी से नहीं सुन रहे क्या, हम अपनी जान देकर के आपको सिखा रहे हैं। ऋतु विमान और ऋजु विमान, ऐसे दो नाम थे कि नहीं। और उसके बाद सबसे ऊपर, उसके ऊपर देवलोक का जो अंतिम विमान था सर्वार्थ सिद्धि, और उसके बाद ऊपर सिद्ध शिला थे ईशत प्रागभार पृथ्वी। तो ये अभी तो द्वीप समुद्र की बात की है, फिर भी जानकारी के हिसाब से हमने ये जानकारी आपको दे दी कि ऐसा आगे चलकर आएगा, एक सूत्र उसमें बताएंगे। तन मध्य मेरु नाभर वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बू द्वीप, योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बू द्वीप। तन मध्य, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच मेरु नाभि, मतलब एक गोल योजन शत सहस्त्र विष्कम्भो, 1 लाख योजन डायमीटर वाला व्यास वाला जम्बू द्वीप होता है, और वृत्तो वो बिल्कुल गोल आकार का है, बाकी सब चूड़ियों के आकार के हैं। पहला वाला गोल आकार, जैसे अपनी कलाई हमेशा गोल आकार की रहेगी, फिर उस पर आप जो भी आभूषण पहनेंगे वो चूड़ियों जैसे आकार के रहेंगे। और मेरु नाभि, मेरु पर्वत उसकी नाभि है जम्बू द्वीप की, एकदम यानी सेंटर में है मेरु पर्वत। भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षाह क्षेत्राणी, फिर उस जम्बू द्वीप में ये 7 क्षेत्र हैं। दक्षिण से उत्तर की तरफ अपन बढ़े तो फिर अपन जिस क्षेत्र में वो भरत है, फिर हिमवान पर्वत को पार करके हैमवत नाम का क्षेत्र है, वहाँ जगन्य भोग भूमि है, फिर उसके बाद महाहिमवान पर्वत आएगा, उसको पार करके एक हरि नाम का क्षेत्र है, वो मध्यम भोग भूमि है, फिर उसके बाद निषद नाम का पर्वत आता है, उस पर्वत को पार करेंगे तो फिर विदेह क्षेत्र आता है, पर विदेह क्षेत्र में मेरु पर्वत की दक्षिण और उत्तर दिशा में भोग भूमि होती है, तो वो उत्तम भोग भूमि है देवगुरु और उत्तर गुरु। फिर विदेह क्षेत्र की उत्तर दिशा में नील पर्वत आएगा, और नील पर्वत के बाद रम्यक नाम का क्षेत्र आएगा, वो मध्यम भोग भूमि का क्षेत्र है, और रम्यक क्षेत्र के बाद रुक्मी नाम का पर्वत आएगा। ये पर्वत जो होते हैं ना, ये पूरे द्वीप में एक ऐसे विस्तार को प्राप्त होते हैं, जैसे ऐसे रेखा खींच दी गई वैसे पूरा पहाड़ एक लाइन में रहता है। तो उसके उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में दोनों तरफ क्षेत्र रहते हैं, पर्वत उनकी बाउंड्री के समान होता है। फिर हैरण्यवत क्षेत्र आता है, वो जगन्य भोग भूमि का है, फिर उसके बाद पुनः शिखरी पर्वत आता है, उसके बाद ऐरावत क्षेत्र आता है। तो इन सब क्षेत्रों में वर्ष शब्द जुड़े हुए हैं, भरत वर्ष, हैमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष। तो भरत वर्ष को आज भारत वर्ष अपन बोलते हैं, बहुत पहले से भारत वर्ष एक शब्द चलता ही है। वर्ष का अर्थ जमीन होता है, भूमि, ये क्षेत्र है। तद विभाजन, अब ये जो क्षेत्र है इनको विभाजित करने वाले जो पहाड़ है उनके नाम बता रहे हैं। तद विभाजन पूर्वा परायता हेमवन महाहेमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तो उनको विभाजित करने वाले पूर्वापर आयत, पूर्व से अपर यानी पश्चिम, आयत यानी लंबे, जैसे अपन ये इसको जम्बूद्वीप मान लो, ऐसे ही ये जम्बूद्वीप हो गया, तो इसमें ये मान लो ये वाला हिस्सा भरत क्षेत्र है, तो ये दिशा पूर्व दिशा है, तो पूर्व से लेकर अपर तक ऐसे लंबे पहाड़ होते हैं, ऐसे 6 पहाड़ होते हैं, तो 6 पहाड़ होंगे तो फिर इस गोल के कितने खंड बनेंगे, 7। सबसे पहला हिमवान पर्वत है, फिर महाहिमवान, फिर निषद, फिर विदेह क्षेत्र के बाद फिर नील रुक्मी और लास्ट में शिखरी, ऐसे पर्वत होते हैं। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममाया, ये पर्वत किन से बने होते हैं? तो सबसे पहले बोल रहे हैं हेम, हिमवान पर्वत है। हेम यानी स्वर्ण का बना होता है। फिर महाहिमवान अर्जुन यानी चांदी का रहता है। फिर निषद पर्वत जो है वो तपनीय है, यानी जो तपा हुआ सोना होता है, ऐसी किसी वस्तु का बना रहता है, सूरज के समान उसका वर्ण होता है। पहला हिमवान जो होता है वो हेम में होता है, चीन पट्ट जैसा वर्ण है, चाइना सिल्क जैसा उसका कलर होता है, पीला पीला। और सेकंड जो है महाहिमवान शुक्ल वर्ण है। तीसरा तपनी जो है वो आदित्य वर्ण है, सूर्य के समान। फिर वैडूर्य मयो नीलो मयूर ग्रीवाभ, फिर नील पर्वत जो है वैडूर्य रत्न के, वैडूर्य रत्न का ही बना हुआ है। और मयूर ग्रीवाभ, मयट प्रत्यय जो है ना वो रचना के अर्थ में आता है। वैडूर्य मय यानी वैडूर्य से रचित, ज्ञान मय यानी ज्ञान से रचित, इसको मय का अर्थ उसमें रचित होता है। फिर रजतमय और रुक्मी, फिर रुक्मी पर्वत जो है फिर रजतमय है, चांदी जैसा शुक्ल है। फिर हेममय शिखरी, चीन पट्ट वर्ण है। फिर वापस ऐरावत के पहले जो पहाड़ आ जाएगा वो बिल्कुल यहाँ के जैसे हिमवान जैसे ही रहेगा, चीन पट्ट वर्ण है। पुनरपि तद विशेष प्रतिपत्त्यर्थमः, और उन पहाड़ों की विशेषता की जानकारी देने के लिए आचार्य कहते हैं, मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः, मणियों के कारण विचित्र यानी रंग बिरंगे हैं पार्श्व भाग जिनके, और उपरि मूले च तुल्य विस्तारः, ऊपर और मूल यानी नीचे जड़ में समान विस्तार वाले हैं पहाड़। यानी सामान्य तो अपन देखते हैं ना कि पहाड़ ऊपर नुकीला होता है, छोटी रहती है, पर ये पहाड़ जो है नीचे ऊपर एक जैसे हैं। तो ऊपर एक जैसे होने के कारण नीचे जितना फैलाव है उतना ही ऊपर भी फैलाव है, जैसे शिखर जी में ऊपर जगह है ना फैलाव जैसे, चोटी तो है कई जगह लेकिन वहां फैलाव में सब 20 टोंक है भगवान की, तो वैसे ये ऊपर फैले हुए पहाड़ है, जितने नीचे थे उतने ही ऊपर है। और मणि विचित्र पार्श्व, इनके पखवाड़े जो है पार्श्व भाग जो है वो, जैसे पार्श्व अपने शरीर में ये वाले भाग को पार्श्व कहते हैं, ये साइड्स, तो उस पहाड़ के जो पखवाड़े हैं दोनों दोनों साइड ऐसे उत्तर और दक्षिण की तरफ, वो पखवाड़े मणि विचित्र, वहां इतने सारे रत्न लगे हुए हैं उनमें कि उनके कारण रंग बिरंगे दिखते हैं वो पहाड़ सभी के सभी, भले उस सोने वाला पहाड़ हो या चांदी वाला हो कोई भी हो, लेकिन जो पार्श्व भाग है वहां पर तो रत्न ही है, मणि विचित्र, मणियों से विचित्र है। यहाँ विचित्रकार आश्चर्य न लेकर विचित्रकार नाना रूप अथवा रंग बिरंगे, तेषां मध्ये लब्धास्पदा हृदा उच्यन्ते, और उन पहाड़ों के बीचों बीच ऊपर सरोवर है उनको कहा जाता है पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषाम उपरि। तेषाम उपरि उन पहाड़ों के ऊपर, हिमवान के ऊपर पद्म सरोवर है, महाहिमवान पर महापद्म है, नील पर तिगिंच सरोवर है, नहीं निषद पर तिगिंच है, फिर नील पर केसरी सरोवर के नाम है, फिर रुक्मी पर महापुंडरीक नाम का सरोवर है, और लास्ट जो है शिखरी पर्वत उस पर पुंडरीक नाम का सरोवर है। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध वृषकंभो हृदः, प्रथम उसमें जो पहला सरोवर है कौन सा है, पद्म सरोवर, उसमें योजन सहस्रायामस हृदय, एक योजन आयाम यानी लंबाई वाला, हृदय यानी हाँ, वो हृदय जो है, वो सरोवर जो है पद्म सरोवर, वो इतना लंबा है, और तदद विष्कम्भ, और 500 योजन चौड़ा है, विष्कम्भ यानी चौड़ा ही होता है। तो पहला जो पद्म सरोवर है, प्रथमो हृदय, पहला सरोवर, हृदय का अर्थ सरोवर होता है, पहला तालाब जो कौन से पहाड़ पर, हिमवान पहाड़ पर है, हिमवान पर्वत के ऊपर जो प्रथम सरोवर है उसका नाम पद्म सरोवर है, और वो 1000 योजन लंबा है, उससे आधा चौड़ा है, 500 योजन चौड़ा है, और 10 योजन अवगाह, और गहरा जो है 10 योजन प्रमाण है। तन मध्ये योजनम पुष्करम, और फिर उनके उसके बीचों बीच एक योजन का पुष्कर कमल है। इतरेषां हृदानां पुष्कराणां च आयामादि निर्ज्ञानार्थमाह, बाकी जो सरोवर हैं और बाकी जो कमल हैं उनकी लंबाई चौड़ाई बताने के लिए आगे का सूत्र है, तद्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणी च। अब ये पद्म से दुगने लंबाई चौड़ाई और कमल वाला महापद्म सरोवर होगा, फिर उससे दुगना तिगिंच होगा, ऐसा क्रम चलेगा। लेकिन एक बात जानकारी की और बता रहे हैं बीच में, तन निवासिन्या देव्य, उस कमल में निवास करने वाली देवियां श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य, ये 6 देवियां हैं। एक कमल में 6 नहीं है, 6 पहाड़ है, 6 पहाड़ पर 6 सरोवर है, एक एक सरोवर है ना, एक एक पहाड़ पर, तो उसमें एक एक सरोवर में जो कमल है उसमें इनमें से एक एक देवी रहती है। जैसे श्री देवी है ये पद्म सरोवर में रहती है, ह्री देवी महापद्म में रहती है, धृति तिगिंच में रहती है, फिर कीर्ति जो है वो केसरी पर्व सरोवर में रहती है, कमल में वहां पर, और उसके बाद महापुंडरीक में बुद्धि देवी रहती है, और लक्ष्मी देवी वो जो अंतिम सरोवर है पुंडरीक वहां रहती है। और कितनी आयु है उनकी, पल्लोपमस्तदयः, एक पल्लोपम की स्थिति है। और वहां साथ में और कौन है, ससामानिक परिषद का सामानिक देव और परिषद के देव भी वहां पर होते हैं। फिर इन सरोवरों में जो पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, इतना लंबा चौड़ा और गहरा सरोवर है, तो पानी निकलता भी है इन सरोवर से और नदियां बन जाती है। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरिद्धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाह। गंगा और सिंधु नदी सीता सीतोदा, गंगा से फिर गंगा सिंधु के बाद में रोहित रोहितास्या हरित और हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण कूला और रुप्य कूला, कूला दोनों में लगाना होगा, रक्ता और रक्तोदा, ये उनमें से मध्यगा माने उनमें मध्य में, उन क्षेत्रों में मध्य में गमन करती हैं ये नदियां, गंगा और सिंधु तो भारत क्षेत्र में करती है गमन। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, दो दो के युगल में जो पूर्व वाली नदियां हैं वो पूर्वगामिनी होती है। यानी जैसे गंगा सिंधु में गंगा नदी पूर्व दिशा में जाएगी, रोहित रोहितास्य में रोहित नदी पूर्व दिशा में जाएगी, हरित हरिकांता में हरित नदी जो है पूर्व समुद्र में जाएगी, ऐसा क्रम चलता है। शेषा स्वपरगा, और बाकी जो सेकंड नंबर की नदी होगी हर जोड़ी में वो अपरगा, अपर यानी पश्चिम, वो पश्चिम समुद्र की ओर जाएगी। जैसे सिंधु नदी पश्चिम में जाती है, गंगा नदी पूर्व में जाती है। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवा देव नद्यः, 14,000 नदियों का 14,000 परिवार नदियां भी गंगा सिंधु आदि नदियों के साथ होती है। इतना विशाल जो क्षेत्र है इसमें 14,000 नदियां और भी होती है गंगा सिंधु के परिवार में गिनी जाती है। फिर द्विगुणा द्विगुणा साथ में लगाते जाना, डबल डबल होती जाती हूं। आगे आगे की जो नदियां ना, हरित हरिकांता, गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्य, रोहित रोहितास्य में जैसे यहां पर 14,000 है तो वहां पर 28,000 होंगे परिवार नदियां रोहित रोहितास्य में, और फिर 28 होते हैं। फिर सीता सीतोदा में उससे डबल हो जाएंगे, 56, ऐसा चलेगा। पर उक्तानाम क्षेत्राणाम विष्कम्भ प्रतिपत्त्यर्थम, ये जो छह क्षेत्र बताए हैं, सात क्षेत्र बताए हैं, इनका विष्कम्भ यानी इनकी जो चौड़ाई है उसकी जानकारी के लिए आचार्य सूत्र दे रहे हैं। भरत षड्विंश पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य, भरत क्षेत्र की जो चौड़ाई है यानी समुद्र के तट से लेकर के हिमवान पर्वत तक, भरत क्षेत्र है क्योंकि पर्वत ने भाग किया है उसको, क्षेत्र को विभाजित किया है, तो वहां तक की जो चौड़ाई बता रहा हूं, षड अधिका विंशति 26, फिर षड विंशतिरधिकानी येषु तानि षड विंशानि, षड विंश पाठ दिया है, तो इस सूत्र में षड विंश पाठ पढ़ना होगा, षड विंशति नहीं, भरत षड विंश, वो व्याकरण के किसी नियम से बनाया है उन्होंने। पंचयोजन शतानी 500 योजन, 500 योजन में कितना अधिक करोगे 26, तो 526 योजन हो गया, उतना चौड़ा ये भरत क्षेत्र है। किम एतावान एव, बस इतना ही है, न इत्या है, नहीं इतना नहीं है, थोड़ा और भी है। षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य, 6/1 यानी 19, तो ये तो पूरे हो गए 526, और प्लस 6/19 योजन और जोड़ देना, तो इतना भरत क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांतः, इससे दुगने दुगने विस्तार वाले आगे के जो वर्षधर और वर्ष यानी पहाड़ और क्षेत्र, वर्षधर, अब क्षेत्र जो है भूमि, भूमिवाचक किसी भी शब्द में धर जोड़ दो तो पहाड़ हो जाता है, पर्वतवाचक हो जाता है, तो उससे दुगने दुगने विस्तार वाले वर्षधर और फिर उसके बाद वाला वर्ष, जैसे भरत क्षेत्र जितना है ना 526 6/19 योजन, तो इससे डबल हिमवान पर्वत होगा, फिर हिमवान पर्वत से डबल हैमवत क्षेत्र होगा, हैमवत पर्वत से डबल महाहिमवान पर्वत होगा, महाहिमवान पर्वत से डबल हरि क्षेत्र होगा, हरि से डबल नील पर्वत होगा, और नील पर्वत से डबल विदेह क्षेत्र होगा। इतना है, पर फिर एक बात कर रहे हैं कि मेरू पर्वत तक के तो ये क्रम चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? तो उसके बाद का सूत्र कह रहे हैं विदेहांता, ये इसी सूत्र में कह दिया कि विदेह तक के डबल डबल होना है, वहां ऐरावत तक के डबल नहीं करते जाना। भरत क्षेत्र से विदेह तक के इनको दुगना दुगना समझ लेना, और उत्तरा दक्षिण तुल्य, फिर मेरु पर्वत की उत्तर दिशा में चले जाओ तो वो बिल्कुल जैसे दक्षिण में क्रम था ना, वैसे वहां ऊपर का उससे उल्टा क्रम रहेगा। फिर एक खास बात बताते हैं कि जो सात क्षेत्र हैं, उन सात क्षेत्रों में दो क्षेत्रों में कुछ विशेषता रहती है, बाकी तो शाश्वत रहते हैं। विदेह क्षेत्र हमेशा दुखमा सुखमा काल से युक्त रहता है। फिर ये हिमवान पर्वत के आगे जो हैमवत क्षेत्र है, और उधर शिखरी पर्वत से पहले जो हैरण्यवत नाम का क्षेत्र है, वो हमेशा जघन्य भोग भूमि रहती वहां। अविरत सम्यक दृष्टियों को दान देने वाले जीव वहां पर उत्पन्न होते हैं, या दान की अनुमोदना करने वाले। और इसी प्रकार हैमवत के बाद में जो हरि क्षेत्र है, वहां मध्यम भोग भूमि रहती है हरि, और कौन सा इधर रम्यक, हरि और रम्यक क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि रहती है, हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि रहती है। और विदेह क्षेत्र में दो भाग ऐसे हैं जहां कर्म भूमि नहीं है, मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में देव कुरु है और उत्तर दिशा में उत्तर कुरु है, वो उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र है, तो वहां हमेशा शाश्वत भोग भूमिया है। तो कितनी हुई शाश्वत भोग भूमिया? जगन, मध्यम, उत्कृष्ट, उत्तम, ऐसे तीन प्रकार की भोग भूमिया दो दो हो गई जम्बूद्वीप में। मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा वाली तीन और उत्तर दिशा में तीन, ऐसी शाश्वत भोग भूमिया छह हो गई जम्बूद्वीप से संबंधित। वैसे धातकी खंड से संबंधित इससे दुगनी होती है, तो छह से दुगनी धातकी खंड में देखेंगे तो 12 हो जाएंगी, ठीक है 12। और उधर पुष्करार्ध में भी वैसी स्थिति है धातकी खंड के समान, तो वहां भी 12 हो जाएंगे, तो 6, 12 और 12, 6 + 12 + 12, 30, ये 30 शाश्वत भोग भूमिया है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में कुछ अलग प्रकार से घटनाक्रम होता है, यहाँ पर ये कर्म भूमि भोग भूमि सब उलट पुलट होती रहती, बदलती रहती है, बाकी ये तो हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं बाकी भूमिया। भरत ऐरावत योर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम, भरत और ऐरावत क्षेत्र में षट समय अभ्याम, छह कालों के माध्यम से, और उत्सर्पिण्य अवसर्पिणी भाव, वो काल जो है उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी से संबंध रखने वाले काल है। उत्सर्पिणी के भी छह काल है, अवसर्पिणी के भी छह काल है, इनके माध्यम से वृद्धि ह्रास हो, वृद्धि और ह्रास दोनों होते हैं। वृद्धि ह्रास मीन्स डिक्रीज, वृद्धि मीन्स इंक्रीजिंग, ये होते हैं। तो किं कृतो वृद्धि ह्रासो, ये किनके वृद्धि ह्रास होते हैं? तो अनुभव यानी भोग, आयु, प्रमाण अधिकृत हो, इनका जो परिमाण होता है वो कम ज्यादा होता रहता है। मनुष्यों की ऊंचाई भी घटती है बढ़ती है, ये ऐसा क्यों होता है? तो ये काल का प्रभाव है। तो उत्सर्पिणी का मतलब उठने वाली काल की गति, अवसर्पिणी यानी उतरने वाली। तो अवसर्पिणी षड विदा, और अवसर्पिणी के छह काल कौन से हैं? सुषमा सुषमा, ये उत्तम भोग भूमि का काल होता है, सुषमा सुषमा। फिर दूसरा है सुषमा मध्यम भोग भूमि, फिर सुषमा दुषमा। तीसरा जो काल है जघन्य भोग भूमि का है, फिर दुष्यम सुषमा। सुषम दुष्मा, सुषमा सुषम दुष्मा, दुष्यम सुषमा, ऐसा उसमें आ की मात्रा श्रद्धा देर ह्रस्व ऐसे सूत्र कोई आता है व्याकरण, तो उससे सुषमा का सुषम हो गया है। सुषम दुष्मा, सुषम सुषमा, सुषमा सुषम दुष्मा, दुष्यम सुषमा। चौथा काल जो होता है दुष्यम सुषमा होता है, और दुष्मा फिर अति दुष्मा, पांचवा दुष्मा होता है और छठा अति दुष्मा होता है। उत्सर्पिण्यपि अति दुष्माद्या सुषम सुषमांता षद्विधैव भवति। उत्सर्पिणी भी यहां से उल्टे क्रम से ले लेना, उत्सर्पिणी का अवसर्पिणी का जो क्रम था उससे विपरीत क्रम से उत्सर्पिणी भी होती है। अवसर्पिण्य परिमाणम, अवसर्पिणी का काल कितना है? दश सागर कोटि कोट्य, दस कोड़ा कोड़ी सागर है। अवसर्पिण्य अपि तावत्य एव, अवसर्पिणी की भी उतनी दस कोड़ा कोड़ियां होती है। और दोनों को मिलाकर के एक कल्प काल कहते हैं। और उसमें सुषम सुषमा चार कोड़ा कोड़ी सागर जो उत्तम भोग भूमि का काल है, फिर दूसरा मध्यम भोग भूमि का काल जो है सुषमा काल है, वहां पर तीन कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। जघन्य भोग भूमि का दुष्यम सुषम सुषम दुष्यमा जघन्य भोग भूमि, उसका काल दो कोड़ा कोड़ी सागर का है। तो कितने सागर हो गए? चार तीन और दो, नौ हो गए, नाइन हो गए, नौ हो गए। अब एक कोड़ा कोड़ी बची, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में ये तीन काल होते हैं, नीचे वाले तीन काल एक कोड़ा कोड़ी सागर में होते हैं। तो उसमें पंचम और छठा काल तो 21-21 हजार वर्ष का है, तो ये दोनों को मिला लो तो 42 हजार हो गए। और एक कोड़ा कोड़ी सागर जो बचा था तो उसमें 42 हजार वर्ष कम लो तो चौथा काल हो जाता है। ताभ्याम अपरा भूमयो वस्तिता, इन दोनों को छोड़कर बाकी भूमियां हमेशा अवस्थित रहती है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यही परिवर्तन होते हैं, ऐसे परिवर्तन जो अभी बताए थे। एक द्वित्र पल्लोपमस्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुरुवकाः। अब ये भोग भूमि में मनुष्यों की आयु कितनी होती है या तिरंचों की आयु कितनी होती है, तो बोल रहे हैं कि एक पल्लोपम हैमवतक, हैमवत क्षेत्र के जीवों की होती है। द्विपल्लोपम हरिवर्ष क्षेत्र के जीवों की होती है। हरिवर्ष के जीव हैं इसलिए हारिवर्षक उनका नाम है, हैमवत के जीव हैं तो हैमवतक उनका नाम है, और देवकुरु के जीव हैं तो दैव कौरवक उनको व्याकरण से बनाया शब्द, तो उनकी तीन पल्ले की आयु देव कुर्व की, आर्यवर्षक की दो पल्ले। तथोत्तराह, बिल्कुल उसी प्रकार उत्तर दिशा में लेना मेरु पर्वत की, कैसे लेंगे? हिरण्यवतक हिमवतक के बराबर हो जाएंगे, राम्यक हारिवर्षक के बराबर हो जाएंगे, और दैव कुरुवक ही उत्तर कुरुवक हो जाएंगे, उत्तर कुरु वाले देव कुरुक के बराबर हो जाएंगे। फिर विदेह क्षेत्र में कितनी आयु होती है? विदेहेशु संख्येय कालः, विदेह क्षेत्र में हमेशा संख्यात काल की आयु होती है, एक पूर्व कोटि की। तो एक पूर्व कोटि का परिमाण कितना है? तो एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का होता है, और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, और ऐसे 1 करोड़ पूर्वों का पूर्वों की एक पूर्व कोटि होती है, उतनी आयु इनकी अधिकतम होती है, और ये संख्यात वर्ष आयुष्क कहलाते हैं। और वहां की अधिकतम ऊंचाई 525 धनुष, सामान्यतः 500 धनुष ही कहलाती है, पर फिर 525 धनुष तक के हो सकते हैं, जैसे बाहुबली स्वामी थे। जगन्य उनकी आयु अंतर्मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्धि में वर्षों की गणना विधि है कि कितने वर्ष होते हैं, 7, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, नाइन जीरोज आफ्टर 7056 के बाद नाइन जीरोज लगा दो तो ये एक पूर्व कोटि की अवधि होती है। तो ये 31 सूत्र आज हुए, फिर आगे के सूत्र फिर देखते हैं।